राधा गोकुलानंद मंदिर में नंदोत्सव के शुभ अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसी दिवस पर कृष्ण भगवान के पिताजी नंद महाराज ने बड़े धूमधाम से श्री कृष्ण के आविर्भाव का महोत्सव मनाया। कल हम ये चर्चा कर रहे थे कि किस तरह से भगवान श्री कृष्ण यहां पर अवतीर्ण हुए और वहां पर वृंदावन में आकर उन्होंने किस तरह के सुंदर मधुर लीलाएं प्रदर्शित की हम सब के लिए, हमारे उद्धार के लिए। वृंदावन में नंद महाराज और माता यशोदा अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझ रही थीं, क्योंकि उनको यहां बहुत समय के बाद एक पुत्र हुआ। बड़े लंबे समय से अभिलाषा थी हृदय में कि एक बच्चा हो, एक संतान हो, पुत्र हो, और कई सालों के बाद में उनके घर में साक्षात भगवान ही पुत्र के रूप में आ गए। सारे वृंदावन के निवासियों के पास जब खबर पहुंच गई तो सारे गोप गोपियां नंद महाराज के घर की ओर चल पड़े। उधर नंद महाराज जी खुशी के मारे नाना प्रकार के दान दे रहे थे, ब्राह्मणों को, याज्ञिकों को, वंदियों को, माघदों को, सूतों को। बताया जाता है कि 20 लाख गौओं का दान दिया। गौदान का बहुत महत्व बताया गया है हमारे शास्त्रों में, क्योंकि गाय ये माता है और उत्कृष्ट दान है, क्योंकि गाय ही हमारे संस्कृति में धन मानी जाती है। हमारे बैंक के नोट ये असली धन नहीं है, ये आज हैं और कल नहीं, कल इनकी कीमत कम हो जाएगी। लेकिन जिसके पास गाय है उसके पास अमृत है, उसके पास असली धन है। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान श्री कृष्ण के बड़े प्रिय हैं गाय, इसलिए नंद महाराज ने सारे ब्राह्मणों को 20 लाख गौएं दिए। आज हमें गौशाला अगर आरंभ करना है तो कहीं से 2, 5, 10 गाय लाना तो बड़ी बात हो जाती है, लेकिन ब्रज के गोष्ठों में लाखों गौएं थी, कोई कमी नहीं थी गौओं की। इसलिए नंद महाराज में हृदय से दान दिया सारे ब्राह्मणों को, भक्तों को, और वहां पे उनके पास जो गौएं थी उनका ऐसे उनको सजाया गया था कि आजकल हम इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। सबसे पहले तो हल्दी और तेल के मिश्रण से उनको लेप लगाया गया, फिर लाल रंग के सुंदर सुंदर रेशम के कपड़े पहनाए गए, उनके सींगों के ऊपर सोना था, सोने के आभूषण। और इस तरह से गौएं और बैल भी बड़े सुंदर लग रहे थे। नंद महाराज के वृंदावन में वो एक आभूषण बन गए थे। वास्तव में जहां गौएं होती हैं वो जगह सुंदर बन जाता है, गौएं से जगह बहुत आकर्षक लगने लगती है। जहां हरियाली हो, अन्न हो और जहां गाय है वहां किस चीज की कमी हो सकती है। गोमय वसते लक्ष्मी, गाय के गोबर में भी लक्ष्मी देवी निवास करती है। तो जिनके पास गाय है भले वो दूध भी नहीं दे रही हो कम से कम गोबर तो देती है, और जहां गोबर में लक्ष्मी देवी है तो वहां गरीबी भला कैसे हो सकता है। अगर किसी किसान के पास धन नहीं है इसका मतलब है कि वो गोबर का प्रयोग कैसे करना ये नहीं जानता। तो वृंदावन में ऐसी दशा थी, सभी लोग वहां धनी थे, सारे गोप वहां के हालांकि किसान थे, लेकिन आजकल की परिस्थिति अलग है। हम देखते हैं कि किसान, उनकी आर्थिक परिस्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए बड़े संख्या में किसान अभी शहरों में चले आ रहे हैं, कारखानों में नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कृष्ण भगवान के समय में वृंदावन में ऐसी अवस्था नहीं थी, सारे गोपगण वहां बड़े धनी थे। और बड़े सुंदर सुंदर कपड़े, पगड़ियां, आभूषण इत्यादि पहनकर अपने अपने बांसुरी, लाठी इत्यादि लेकर आए नंद महाराज के घर में। और गोपियां भी नाना प्रकार के गहनों से अलंकृत, सुशोभित वहां पर जल्दी जल्दी से आई यशोदा मैया के पुत्र को देखने के लिए। सारे ब्रज में खबर फैल गई कि नंद महाराज और यशोदा मैया की यहां एक पुत्र हो गया है। हाहाकार मच गया, धूमधाम हो गई सारे ब्रज में। सभी लोग वहां आए, अभिनंदन करने लगे नंद महाराज का और यशोदा मैया का कि आप कितने भाग्यशाली हैं और आपका बच्चा देखिए ऐसे लगता है कि यह साक्षात नारायण है। वो तो नहीं जानते थे कि वो वास्तव में साक्षात नारायण है, वो तो कह रहे थे कि दिख रहे हैं। आप कितने भाग्यशाली हैं, कितना सुंदर बच्चा है ये। इस तरह से नंद महाराज ने वहां जो अनुष्ठान किया, वहां गोप गोपियां भी बड़े खुशी से मौज मना रहे थे। जहां गौवे हैं वहां दूध और दही की कमी नहीं होती, तो वहां पे गोप गोपियां खेल करने को आरंभ कर लिए, दही लिए और दही लेकर एक दूसरे के ऊपर फेंकने लगे। दही की होली चल रही थी। और फिर वहां पे एक कोई मोटे गोप थे, वो फिसल कर गिर गए, सभी लोग हंसने लगे। इस तरह से खेल चल रहा था गोप गोपियों का आनंद में, क्योंकि ये महोत्सव चल रहा था। और ऐसे महोत्सव के समय उनके पास जो प्रचुर मात्रा में दही, दूध, घी इत्यादि हुआ करता था, वो एक दूसरे के ऊपर छिड़कते थे। आजकल इसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। घी के बने पदार्थ खाना मतलब ये एक ऐश्वर्य का लक्षण है। इसलिए एक नास्तिक हुए हैं इतिहास में जिनका नाम है चार्वक मुनि। उन्होंने कहा है, ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत, यावत जीवेत सुखम जीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य किम पुनः आगमनो भवेत। जब तक जीते हो ऐश करो, सुखी से जियो, सुख रहो, सुखी रहो। और कैसे हम सुखी रह सकते हैं? घृतम पिबेत, घृतम मतलब घी, असली घी से बनाए हुए पदार्थ का सेवन करो, मतलब ये जीवन का सच्चा आनंद है। और इसके लिए अगर धन नहीं है कोई परवाह नहीं, ऋण ले लो, कर्ज ले लो, चोरी करो, कुछ भी करो, लेकिन घी खाओ। ये हुए नास्तिक चार्वक मुनि। चोरी करने का, ऋण लेने की बात ये तो दूसरी रही, लेकिन कम से कम एक बात तो उन्होंने सच्ची कह दी कि असली जीवन मतलब घी में तैयार हुए पदार्थों का सेवन करना, ये असली जीवन है, ना कि आजकल के वनस्पति इत्यादि, ये असली जीवन नहीं है। तो इस तरह से वहां घी, दूध बहुत हुआ करता था। इस तरह से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि जो किसान हैं या वो गरीब हैं या एक अच्छा कोई काम नहीं समझा जाता आजकल। आजकल कोई सरकार में कोई बड़ा अफसर बन गया, कोई उद्योगपति बन गया, तो व्यापारी बन गया, तो लोग समझते हैं कि ये बड़ी बात है। लेकिन हमारे इतिहास में देखा जाता है कि जो इस तरह के वैश्य थे, जो कृषि किया करते थे, गोरक्षा किया करते थे, वो बड़े धनी थे, सुखी थे। और वृंदावन में सुख का सबसे बड़ा कारण तो ये था कि कृष्ण वहां उपस्थित थे। इस तरह से वहां महोत्सव चलता गया। और जब महोत्सव समाप्त हो गया, कृष्ण का अभिषेक हुआ, सारे गोप गोपियां इधर उधर इधर उधर बड़े आनंद से जा रही थी। और इसके बाद में नंद महाराज ने और दान दिया सभी को और ये नंदोत्सव का शुभ अवसर अच्छी तरह से मनाया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने सुंदर लीलाएं करना आरंभ किए। और जैसे ही वो बाल रूप में कार्य करने लगे, सारे गोपगण इतने आकर्षित हुए उनके लीलाओं से कि कृष्ण के बिना वो बिल्कुल रह नहीं सकते थे। जैसे जैसे कृष्ण बड़े हुए, वो धीरे धीरे से चलने लगे, अपने घुटनों पे, फिर अपने पैरों पे। और जब से वो चलने लगे, उनकी लीलाएं उनकी शरारतें आरंभ हो गई। सब जगह जाकर वो लोगों को तंग किया करते थे, गौओं को, वत्सों को, गोप गोपियों को। बड़े परेशान हो जाते थे गोप गोपियां, लेकिन फिर कृष्ण के मासूम और सुंदर चेहरे को देखकर उनका गुस्सा खत्म हो जाता था। जब कृष्ण जाकर उनके घर में माखन चुराया करते थे और जब पकड़े जाते थे जिनके घर में माखन चोरी की थी, वो गोप या गोपी अगर कृष्ण को डांटते कि तुम चोर हो, मेरे घर में आके माखन चोरी करते हो, तो कृष्ण भगवान गुस्से होकर कहते, मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो। और वैसे भी मैं कोई गरीब नहीं हूं, मेरे घर में कोई दही माखन की कमी नहीं है, मेरे घर में जो मक्खन है तुम्हारे घर के मक्खन से कहीं ज्यादा अच्छा है। और इसके अतिरिक्त ये देखो, तुम्हारे घर में जो मक्खन है ये तो बिल्कुल बेकार है, देखो बंदर भी नहीं खा रहे हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे बंदरों को भी खिलाया करते थे। इससे हमें समझना चाहिए कि हमारे घर में जो धन है वो केवल हमारा नहीं है, उसका अधिकार केवल हमारा नहीं है, इसके ऊपर इसका बंटवारा होना चाहिए सब प्राणियों के लिए। ये हमारे लिए उपदेश है शास्त्रों का। ऐसा नहीं कि हम धन एकत्र करें और केवल हमारे पास रख लें हमारे भोग के लिए। ये सभ्य समाज नहीं होता। सभ्य समाज वो है जहां व्यक्ति अपने आप के लिए नहीं जीता, दूसरों के लिए जीता है। कल्पना कीजिए अगर हमारे समाज में लोग ऐसे जीते तो यही तो वैकुंठ हो जाता। वैकुंठ में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो वृंदावन के लोग इसी भावना से जी रहे थे, लेकिन एक लीला थी कृष्ण भगवान की। और फिर गोपियां के माता यशोदा से शिकायत करती थी कि अरे यशोदा, तुम्हारा जो बच्चा है बड़ा शरारती है, हमें आके इतना तंग करता है। पहले तो हमारे घर में आता है, माखन चोरी करता है, और जब हम मना करते हैं तो चुपके से गुस्से होकर आकर मलमूत्र यहां हमारे घर में इधर उधर फैल जाता है, और फिर जब भाग जाता है तो फिर से लौटकर हमारे छोटे बच्चों के कान को पकड़ के यूं कर देता है ताकि हमारे बच्चे रोने लगते हैं, और फिर आकर हमारे दही के मटके तोड़ देता है, भाग जाता है। और हम उसे डांटने जाते हैं तो इतना मासूम चेहरा लेकर बैठता है कि डांटने की इच्छा ही हमारे हृदय से चली जाती है। तुम सोचते हो कि ये बच्चा बड़ा मासूम है, देखो ऐसे ऐसे भोला भाला जैसे बैठ रहा है, मानो कि उसने कुछ किया ही नहीं है, लेकिन जान लो सबसे बड़ा शरारती है। तो माता यशोदा बाल कृष्ण की ओर देखती, अलग अलग भावनाएं हृदय में रहती, मन में सोचती, अरे ये भाल भोला भाला बच्चा, मासूम बच्चा है, ये भला क्या शरारती कर सकता है, ये लोग खामखा आ रहे हैं गोप गोपियां शरारत लेकर। फिर बाद में सोचती, शायद ये जो कह रहे हैं सही है, लेकिन फिर भी डांटने का मन नहीं होता। कभी कभी डांट भी देती, और जब डांट देती तो कृष्ण भगवान का चेहरा देखकर यशोदा माता भी डांट भूल जाती। इस तरह से कृष्ण भगवान लीला करते रहे सारे वृंदावन में, सबका मन उन्होंने हरण कर लिया। एक बार ऐसे हुआ कि जब कृष्ण भगवान थोड़े बड़े हुए थे तो उनके ग्वाल बाल मित्र बलराम सहित माता यशोदा के पास में आए एक शिकायत लेकर। ये सब भगवान की लीला है भक्तों के आनंद को बढ़ाने के लिए, खास करके गोपियों के आनंद को बढ़ाने के लिए भगवान ये सारी लीलाएं रची। और आ गए और कहने लगे कि कृष्ण ने मिट्टी खाई है। तो माता यशोदा चिंतित हो गई, वो तो नहीं जानती थी कि मेरा बच्चा तो भगवान है, मिट्टी भी उसी ने बनाई है। उन्होंने कहा, कृष्ण तुम क्यों इतने नटखट हो, क्यों हर रोज मुझे तुम्हारे बारे में शिकायत सुननी पड़ती है, क्या हमारे घर में मिठाइयों की कमी है, दूध दही की कमी है, जो तुम एक सुनसान जगह में जाकर अकेले मिट्टी खाते हो। तो कृष्ण कहने लगे, मैया ये लोग वास्तव में हार गए मेरे से खेल में, इसलिए शिकायत कर रहे हैं, मेरे से ईर्ष्या करते हैं, ये लोग झूठ बोल रहे हैं। अब वास्तव में कृष्ण भगवान ने मिट्टी खाई नहीं खाई वो तो कृष्ण ही जाने, लेकिन शिकायत तो आ गई, कंप्लेंट तो आ गया। अब माता यशोदा ने कृष्ण से कहा कि ठीक है मैं देख लेती हूं, मिट्टी खाई नहीं खाई, मुंह खोलो। तो कृष्ण भगवान ने मुंह खोल दिया, जैसे हम डेंटिस्ट के पास जाकर डेंटिस्ट बोलते मुंह खोलो, हम खोल देते हैं, कृष्ण भगवान ने आज्ञाकारी पुत्र के रूप में मुंह खोल दिया। ये है भगवान का प्रेम अपने भक्तों के प्रति। वो परम भगवान जिनके स्मरण मात्र से ही देवी देवता और सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, हवा चल रही है, मृत्यु सबका पीछा कर रही है, उनके डर से सब कुछ चल रहा है, लेकिन माता यशोदा के डर से यहां वही परम भगवान कांप रहे हैं, आज्ञाकारी बालक पुत्र बन के मुंह खोल रहे हैं, देखिए मेरे मुंह में मिट्टी नहीं है। और जैसे कृष्ण भगवान ने अपना मुंह खोल दिया तो माता यशोदा ने मुंह के अंदर देखा, तो क्या देखा? सबसे पहले उन्होंने देखा कि सारा ब्रह्मांड अंदर है, पहाड़ हैं, नदियां हैं, समुद्र हैं, सारे ग्रह लोक हैं, वहां पे ऊपर के लोक, नीचे के लोक, 84 लाख योनियां हैं, नक्षत्र हैं, तारे हैं, सब कुछ वहां है, और उसमें वृंदावन, और वृंदावन में नंद महाराज का घर, और नंद महाराज के घर में माता यशोदा खुद अपने आप को देख रही हैं, कृष्ण के मुख में देख रही हैं। माता यशोदा ने जब यह दृश्य देखा तो उनका सर चकरा गया, ये क्या मैं देख रही हूं? उनके मन में कई विचार घूम रहे थे, क्या यह स्वप्न है या क्या यह देव माया है? क्या मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है या क्या ये मेरे छोटे बच्चे की योग शक्ति है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। फिर देखते देखते माता यशोदा इस बात का विश्लेषण करने लगी, सोचने लगे मैं तो जगी हुई हूं इसलिए तो स्वप्न नहीं हो सकता, और जहां तक देव माया का प्रश्न है वैसे कहां देवी देवता और कहां मैं जैसी एक साधारण गांव की महिला, एक ग्वालिन, एक गोपी, मुझे देवी देवताओं से भला क्या लेना देना है? देवी देवता ऐसा कष्ट क्यों करें कि मुझे माया में डालें? तो ये तो देव माया का खेल नहीं हो सकता। और जहां तक ये बात है कि क्या मेरी बुद्धि भ्रमित हो चुकी है, मुझे तो नहीं लगता कि मैं पागल हो गई हूं, मैं तो ठीक ठाक से घर के कार्य कर रही हूं, सब कुछ संभाल रही हूं, ठीक से सोच पा रही हूं, बोल पा रही हूं, तो मेरी बुद्धि तो ठीक है, मेरे होश तो ठिकाने हैं, तो अवश्य ये मेरे बच्चे की कोई योग शक्ति होगी, भगवान नारायण ने अवश्य मेरे बच्चे के अंदर ऐसी कोई विशेष शक्ति प्रदान की है, नहीं तो ऐसा दृश्य दिखने में नहीं आता। तो माता यशोदा तुरंत नारायण की स्तुति करने लगी कि हे नारायण मेरे बच्चे की रक्षा करो, न जाने क्या क्या हो रहा है इसके मुख में, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा। उस समय माता यशोदा के हृदय में जो वात्सल्य की, मातृत्व की जो भावना थी वो क्षणिक कम हो गई, और जब कम हो गई तो कृष्ण भगवान को अच्छा नहीं लगा, तो तुरंत कृष्ण भगवान ने वो योग माया का पर्दा फिर से माता यशोदा को आंखें के माता यशोदा के आंखों के सामने डाल दिया। अब माता यशोदा कृष्ण भगवान से इतना प्रेम करती थी कि उनको बिल्कुल ये नहीं पता था कि उनका बच्चा भगवान है, और अगर कह भी देता कोई उनसे ये बात तो वो विश्वास नहीं करती, वो कहती ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरा लाडला बच्चा है, मिट्टी खाता है, मुझे डांटना पड़ता है, हमेशा बार बार चौकीदारी करनी पड़ती है ताकि ये कोई शरारत न करे, और इतने सारे असुर आए हैं, पूतना आए, शकटासुर आए, और इसके जान पे खतरा है, अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये बच्चे के लिए जान का खतरा है, इसलिए ये तो मैं विश्वास नहीं कर सकती कि ये भगवान है, ये कैसे हो सकता है। इस तरह से माता यशोदा अपने बच्चे को एक साधारण बच्चा समझकर ही उनके संग लीला कर रहे थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण ने फिर से योग माया का पर्दा माता यशोदा के आंखों पर डाल दिया तो माता यशोदा सोचने लगी कि ये तो एक स्वप्न था, और जैसे हम स्वप्न को भूल जाते हैं एक क्षण में, दो क्षण में, उसी तरह से माता यशोदा भी इस अनुभव को भूल चुके। कह दिया ओ ठीक है ये तो कोई सपना हुआ होगा, न जाने क्या हुआ। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने अपने अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन एक क्षण में माता यशोदा को किया। तो देखिए ये है भगवान। आपको याद होगा कि जब माता देवकी जो कि कंस के कारागर में बंद थी, जब उनके गर्भ से कृष्ण भगवान प्रकट हुए तो देवकी के मन में तूफान जैसा चल रहा था कि अब क्या होगा, कंस आएगा और फिर ये मेरे बच्चे की हत्या करेगा। और दूसरी ओर वो जान रही थी कि मेरा बच्चा विष्णु है, लेकिन वो सोच रही थी कि जिस भगवान के उदर में पेट में सारा ब्रह्मांड संहार होने के पश्चात प्रवेश करता है, वही भगवान अभी मेरे पेट में है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। और अगर कि कोई आदमी कोई व्यक्ति इस बात को सुनेंगे तो हंसेंगे मेरे ऊपर, ये कैसे हो सकता है, मैं तो उपहास के पात्र बन जाऊंगी। लेकिन वही श्री कृष्ण जिनके उदर में सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं सृष्टि के संहार के बाद में, वही श्री कृष्ण आज यशोदा माता को ये अनंत कोटि ब्रह्मांड दिखा रहे हैं। तो ये है भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं। इन लीलाओं के प्रति हृदय में आकर्षण जागृत करना ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमारे जीवन की परिपूर्णता है। इसलिए हमें चाहिए कि बार बार भक्तों के संग में आएं और ऐसे लीलाओं का श्रवण करें। जितना ज्यादा हम इन लीलाओं का श्रवण करेंगे हमारा हृदय शुद्ध हो जाएगा। शुरुआत में अच्छे नहीं लगते इन लीलाएं, क्योंकि हम संसार की कथा सुनने से आदि सुनने के कितने सुन लिए हैं, आदि हो गए, इसलिए अभी अच्छा नहीं लगता हमें। लेकिन जितना हम सुनते हैं धीरे 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 से इतना ही रस बढ़ने लगता है। तो इस तरह से वही अनंत कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी श्री कृष्ण यशोदा मैया और नंद महाराज के घर में प्रकट हुए और नाना प्रकार के कार्य उनके घर में उनके आंगन में उनके गोष्ठों में करने लगे। तो देखिए नंद महाराज का कितना भाग्य था। नंद महाराज के घर में साक्षात नारायण कृष्ण के रूप में आए, और जहां नारायण है वहां लक्ष्मी देवी तो होंगी ही, इसलिए नंद महाराज का घर हमेशा लक्ष्मी देवी का निवास स्थान बना। अब देखिए नंद महाराज के आंगन में जो बच्चा अपने घुटनों पे चल रहा था उस बच्चे को कोई पहचान नहीं पाया। इसलिए एक भक्त हुए हैं जिन्होंने एक सुंदर श्लोक लिखा है, वो कहते हैं श्रुतिम इतरे स्मृतिम अपरे भारतम अन्ये भजन्तु भवभीताः अहम् इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्मा। वो कहते हैं कि कई लोग उपनिषदों की का पाठ करते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो पुराणों का पाठ करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो इतिहासों का पाठ करते हैं जैसे कि महाभारत रामायण इत्यादि, लेकिन ये सब क्यों करते हैं। भजन्तु भवभीताः, ये भव रोग जो है जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, ये जो सबसे बड़ी बीमारी है इस संसार की इसको भव रोग कहते हैं, जन्म और मृत्यु की बीमारी, बारंबार जन्म लेना बारंबार मरना और पुनः जन्म लेना। तो जो लोग इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना चाहते हैं इस भीति से जन्म और मृत्यु के भय से, वो इन शास्त्रों को पढ़ते हैं पाठ करते हैं। लेकिन ये संत कहते हैं कि मुझे इन श्रुतियों से स्मृतियों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो केवल नंद महाराज की उपासना करता हूं। अहम इह नंदम वंदे यस्यालिंदे परम ब्रह्म, मैं उन नंद महाराज की पूजा करता हूं अर्चना करता हूं जिनके आंगन में परम ब्रह्म एक साधारण बालक के रूप में खेल रहे हैं। तो देखिए नंद महाराज का क्या भाग्य था। भगवान का माता पिता बनना मतलब ये कोई साधारण बात नहीं है। भगवान का भक्त बनना भी एक कठिन बात है, सभी लोग नहीं कर सकते, सभी लोग मंदिर में भी नहीं आ सकते हैं, इसके लिए भी बहुत जन्मों के पुण्य चाहिए। ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते त्वंत मोह निर्मुक्ता भजन ते माम दृढ़ व्रता। दृढ़ता से भक्ति करने के लिए ये हमें चाहिए कि हमारे सारे पाप नष्ट चुके हुए हों और हमारे अंदर भक्ति की सुकृति पर्याप्त मात्रा में हो, तभी चल के कोई व्यक्ति भगवान की दृढ़ता से भक्ति कर सकता है। और मंदिर में आने के लिए भी बहुत सारी सुकृति चाहिए। कई लोग हैं बेलगाम शहर में, लेकिन कितने लोग जाते होंगे भगवान के मंदिर में, जहां जाकर भगवान का नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान की सुंदर कथाएं सुनते हैं। सभी के पास ये सुकृति नहीं है। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत अर्जुन आर्थो अर्थार्थ जिज्ञासु ज्ञाने च भरतर्षभ। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, आम तौर से चार प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं, मेरे शरण में आते हैं, मेरे मंदिर में आते हैं। पहले तो वो हैं जो कि आर्तः पीड़ित हैं, जिनके हृदय में कोई दुख है। हे प्रभु मेरा रोग दूर कर दीजिए, हे प्रभु मेरे घर में कोई संकट है उसे दूर कर दीजिए। दूसरे हैं अर्थार्थी, जो कुछ चाहते हैं भगवान से, कोई भौतिक लाभ चाहते हैं। हे प्रभु मेरे व्यवसाय को बढ़ाइए, मुझे थोड़े पैसे दे दीजिए, मुझे संसार में बहुत ही एक प्रसिद्ध बड़ा व्यक्ति बनाइए। अर्थार्थी। जिज्ञासु, जो सोचता है चलो जाकर देखते हैं ये भगवान के मंदिर में क्या चल रहा है, इतने सारे इन्होंने पैम्फलेट वगैरह बांटे हैं ये हरे कृष्ण मंदिर में, चलो देख कर तो आते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। सुना है बहुत सारे चीजें हैं हरे कृष्ण हरे राम मंदिर के बारे में, सुने हैं, दम मारो दम भी सुना है, सिनेमा भी देखे हैं और बहुत कुछ हमने सुना है पढ़ा है, जाके देख तो लेते हैं। जिज्ञासु, मन में जिज्ञासा है कि क्या करते हैं ये लोग। गलतफहमियां भी हैं बहुत, लेकिन जो आते हैं भगवान का दर्शन करते हैं गलतफहमियां दूर हो जाती है। और थोड़े हैं जो ज्ञानी हैं, वास्तव में भगवान को जानना चाहते हैं, अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं। इस तरह से भगवान कहते हैं कि ये जो सुकृति है हे अर्जुन, इन्होंने पूर्व जन्मों में सुकृति की है, इसलिए ये लोग मेरे शरण में आते हैं, इसलिए उदार हैं, इसलिए इनको साधारण नहीं समझना। भले वो भौतिक इच्छा लेकर आ रहे हैं, क्योंकि भौतिक इच्छा की पूर्ति के लिए कोई आदमी बाहर जाके बैंक को भी लूट सकता है, कम से कम बैंक को नहीं लूट रहा, भगवान के सामने आ रहा है, तो उदार हृदय का आदमी है वो। लेकिन अर्जुन जान लो कि इसके ऊपर भी कोई व्यक्ति होते हैं, उच्च श्रेणी के व्यक्ति, उनको महात्मा कहते हैं। महात्मा की परिभाषा क्या है? महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिमाशिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिम अव्ययम्। हे अर्जुन ये जान लो कि ये संसार में जो लोग मेरे दैवी प्रकृति या मेरे चरण कमलों का आश्रय लेते हैं उन्हें महात्मा कहते हैं। भजन्ति, वो मेरा भजन करते हैं। किस भावना से भजन करते हैं? अनन्य मनसो, अनन्य चित्त से, एकाग्र चित्त से मेरा भजन करते हैं। संसार के भोग में बिल्कुल रुचि नहीं उनको, मेरे अलावा और कुछ नहीं जानते हैं। ज्ञात्वा भूत आदिम अव्ययम्। कैसा कैसे भावना से भक्ति करते हैं कि ये तो परम ब्रह्म है, ये हमारे आराध्य देव हैं, अव्यय हैं, ये हमारे जैसे साधारण व्यक्ति नहीं है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम नाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सुमहात्मा सुदुर्लभ। हे अर्जुन, बहुत बहुत जन्मों के बाद में कोई ज्ञानी पुरुष ही इस निष्कर्ष पे पहुंच सकता है कि मैं वासुदेव ही सब कुछ हूं, वासुदेव सर्वम इति, कृष्ण भगवान बता रहे हैं। और ऐसा व्यक्ति जो इस निष्कर्ष पे पहुंच जाता है हे अर्जुन, उसे महात्मा कहते हैं। सुदुर्लभ, ऐसे व्यक्ति को पाना संसार में दुर्लभ ही नहीं, सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ। जो वास्तव में भगवान को पहचानता है, भगवत गीता और श्रीमद् भागवत में भगवान का परिचय दिया हुआ है। भगवान को संसार में मानने वालों की कमी नहीं है, यह भी अच्छा है, भगवान को मानना चाहिए सभी को, लेकिन भगवान का परिचय बहुत कम लोगों को है। भगवान दिखते कैसे हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे कार्य करते हैं, कहां पर रहते हैं, किन के साथ में रहते हैं, उनका पता क्या है, टेलीफोन नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, ईमेल क्या है, ये सारी जानकारी ये भागवत और गीता में दी हुई है। यहां आकर जब हम श्री कृष्ण को देखते हैं, बांसुरी बजाते हुए शांति से खड़े हैं, हम आते हैं उनके सामने, भले हमारे मन में जो भी तूफान क्यों ना चल रहा हो या हमारा मन शांत भी क्यों ना हो, वो बस खड़े हैं आराम से बांसुरी बजाते हुए। संसार में भूकंप हो जाए, संसार में अकाल पड़ जाए, बाढ़ आ जाए, उपद्रव हो जाए, खड़े हैं वो आराम से वृंदावन में बांसुरी बजाते हुए, इंतजार कर रहे हैं कि कब ये संसार के लोग मेरे पास आएंगे, मेरे शरण में आएंगे। श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, यही एकमात्र सत्य है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे अर्जुन, ये जान लो और घोषणा करो सब जगह है कि मैं ही परम सत्य हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है ये संसार में या फिर संसार के परे भी। जिस तरह से हे अर्जुन, एक मोतियों की माला में धागे को न देखते हुए भी हम जान सकते हैं कि यहां धागा है, जान सकते हैं ना, कैसे जान सकते हैं, अगर धागा नहीं होता तो सारी मोतियां जो है बिखर जाती, इधर तितर हो जाती। तो जिस तरह से मोतियों की माला को देखकर हम अनुमान सही तरह से लगा सकते हैं कि इस मोतियों की माला में धागा है, न देखते हुए, ठीक उसी तरह से भगवान के इस सुंदर अद्भुत सृष्टि को देखकर तुरंत कोई व्यक्ति जो बुद्धिमान है वो अनुमान लगा सकता है कि हाँ कोई भगवान है जो कि इस सृष्टि को चला रहे हैं, हमें चला रहे हैं, हमारे जीवन को चला रहे हैं। सूरज सही समय पे उदित होता है, सही समय पे अस्त होता है, हम भले रोज 5 मिनट जल्दी देर करें लेकिन सूरज चांद तारे नक्षत्र ग्रह लोग कभी देर से आते नहीं है, ठीक समय पे सब कुछ होता है, तो कैसे संभव है। जहां कोई कानून होता है, कानून बनाने वाला होता है, तो भगवान कहते हैं मैं ही वो कानून बनाने वाला हूं और मुझसे श्रेष्ठ कोई भी सत्य नहीं है। तो वही परम श्रेष्ठ सत्य श्री कृष्ण वृंदावन में आए हैं, नंद महाराज के घर में मिट्टी खा रहे हैं, गौओं को चरा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं। इसलिए अगर किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाए इस बात को सुनकर, आश्चर्य की बात नहीं है, कोई बड़ा व्यक्ति ऐसे कार्य थोड़ी करता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे बहुत साल पहले, जिनका नाम था ग्लैडस्टोन। तो एक बार उनको दफ्तर में मिलने के लिए कोई व्यक्ति आए। ये छोटी सी कथा को हम बार बार सुनाना पसंद करते हैं क्योंकि इसके बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो उनके सेक्रेटरी ने कहा उस व्यक्ति से कि आप बाहर ही इंतजार कीजिए। 15 मिनट बीत गए, आधा घंटा बीत गया और ग्लैडस्टोन साहब का कोई पता नहीं। तो आखिर में ये व्यक्ति ने कहा कि जाके देख तो ले कि ये कर क्या रहे हैं ग्लैडस्टोन जी। तो अंदर गए और क्या देख रहे हैं, ग्लैडस्टोन प्रधानमंत्री सारे इंग्लैंड के अपने घुटनों में चल रहे हैं घोड़े बनकर, और उनका पोता जो है उनके पीठ पर छड़ी लेकर उनको मार रहा है, चलो चलो घोड़े, चलो मेरे घोड़े। और ग्लैडस्टोन जी बड़े खुशी से चले लिए जा रहे हैं कंधों के ऊपर। उस समय ब्रिटेन सबसे शक्तिशाली राज्य था, ऐसे कहावत थी उस समय कि इंग्लैंड ब्रिटिश राज में सूरज का सूर्यास्त नहीं होता था, इतना बड़ा था उनका राज्य। और इतने बड़े राज्य के प्रधानमंत्री राज करने में इतना आनंद नहीं ले रहे हैं जितना कि अपने पोते को अपने कंधे पे रखकर घोड़ा बनकर लीला करना, खेल करना। तो उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण भी वेदों की स्तुतियों से बड़े बड़े यज्ञ के आहुतियों से, बड़ी बड़ी तपस्या से, ध्यान करने वाले योगी की तपस्या से इतना प्रसन्न नहीं होते जितना कि वो साधारण वृंदावन के ग्वाल बाल और गोपियां जो थी, गोप गोपियां, उनके मधुर और सरल भक्ति से। इसलिए उन्होंने नंद महाराज के घर में आके ये स्वीकार किया। तो जो व्यक्ति को अपने हृदय में यही कृष्ण भगवान के प्रति आस्था श्रद्धा जागृत हो जाती है, उसका जीवन धन्य हो जाता है। कृपा करके याद रखिएगा, संसार में यही एकमात्र सत्य है। जरा सोच लीजिए, आपके जीवन में सबसे बड़ा कष्ट क्या हो सकता है, सबसे बड़ा संकट आपके जीवन में क्या हो सकता है? सोचिए एक 5-10 क्षण के लिए, अपने ही मन में सोचिए। आप में से कोई शायद सोच रहे होंगे कि अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो सबसे बड़ा संकट होगा ये, अगर मेरे किसी निकट के रिश्तेदार की मृत्यु हो जाए तो ये सबसे बड़ा संकट हो सकता है, अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए या मेरा सारा धन चले जाए, मेरा अपमान हो जाए समाज में, शायद ये सबसे बड़ा संकट हो सकता है। लेकिन जितना भी बड़ा संकट हमारे जीवन में क्यों ना आए, हमें केवल ये याद रखना चाहिए, जब उस कष्ट का अनुभव हम कर रहे होते हैं, जब उस संकट के भीतर हम होते हैं, उस समय हमें याद रखना चाहिए कि ये तो तूफान है। जैसे तूफान आता है और जाता है, ऐसे कई तूफानें आएंगी और जाएंगी और आए हैं और गए हैं हमारे जीवन में, इस जन्म में और हमारे अनादिकाल से पूर्व जन्मों में। लेकिन भले तूफानें आए नहीं आए, भले हम तूफान के भीतर हों या बाहर, लेकिन बांसुरी बजाने वाले वृंदावन खड़े होकर बांसुरी बजाते रहे हैं और बजा रहे हैं और बजाएंगे। बस ऐसे संकट के समय इन्हीं को स्मरण कीजिए, ये याद रखिए कि ये सब मिथ्या है, झूठ है, ये सब सपना है। मेरे पैसे चोरी हो गए, मेरा ये हुआ वो हुआ, जैसे कि हम कभी रात में स्वप्न देखते हैं, हाय कोई शेर मेरा पीछा कर रहा है और हम दौड़ते हैं दौड़ते हैं भागते हैं, पसीने छूट जाते हैं और फिर हमारे स्वप्न से हम जाग जाते हैं पसीने पसीने होकर, और फिर देखते हैं हंस लेते हैं, अरे ये तो सपना था, कोई शेर नहीं, सिंह नहीं, कुछ नहीं, मैं तो फलाना फलाना व्यक्ति हूं और मेरे ये बच्चे हैं, ऐसा है वैसा है, मैं तो अपने बिस्तर पे लेटा हुआ हूं, कोई डर की बात नहीं है। उसी तरह से संसार में जो हम अनुभव करते हैं ये केवल स्वप्न है, इसलिए इनको सहन करना चाहिए, डामाडोल नहीं होना चाहिए इसमें। कई बार लोग यही प्रश्न करते हैं कि ऐसा संकट मेरे मुझे क्यों आया, लेकिन ऐसा समय बर्बाद करने के बजाय हमें सोचना चाहिए कि ठीक है, जो होना था अपने किस्मत में था सो हो गया, इसके बारे में शोक करने से क्या फायदा है। समय का सदुपयोग करना चाहिए, बांसुरी वाले मुरली मनोहर का भजन करना, उसमें हमारे समय का सदुपयोग हो जाएगा, इससे हमारे मन में इतना आनंद आएगा कि हम सारे संकट को भूल जाएंगे। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदाह आगमा पायिनो नित्यः ताम स्थितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, जिस तरह से संसार में गर्मी आती है चले जाती है, जाड़ा आता है चले जाता है, ठीक उसी तरह से संसार का सुख और दुख भी आता है चले जाता है। तो जो व्यक्ति संसार के सुख दुख को सहन करना सीख लेता है वही एकमात्र मुक्ति के लिए योग्य बन जाता है। इसलिए संसार के सुख दुख से विचलित न होकर, संसार के चमक धमक से प्रभावित न होकर, केवल इस मुरली वाले के मुरली के तान से अगर कोई प्रभावित हो जाए तो उसका जीवन धन्य हो जाए। ये है मनुष्य जीवन का उद्देश्य। कृष्ण भगवान किसी एक प्रांत के नहीं है, किसी एक देश के नहीं है, किसी एक धर्म के नहीं है, कृष्ण भगवान के ऊपर किसी का मोनोपोली नहीं है, कृष्ण भगवान भगवान है, सभी के लिए है, भगवान किसी देश जाति धर्म के नहीं होते, भगवान तो भगवान ही होते हैं। और हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के बारे में इतनी गहराई में ज्ञान, इतने विस्तार में उनका पहचान हमें दिया हुआ है इस भागवत ग्रंथ में, श्रीमद् भागवतम। महामुने कृते किम वा परै ईश्वरः, वेद व्यास कहते हैं कि मेरी ये रचना है श्रीमद् भागवत, जिसके हृदय में ये श्रीमद् भागवत के प्रति रुचि जागृत हो जाती है, भला दूसरे ग्रंथ की, दूसरे शास्त्र की क्या आवश्यकता हो सकती है। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भगवान उत्तर प्रदेश के भगवान हैं, या भारतीय भगवान हैं, या हिंदू भगवान हैं। जी नहीं, भगवान भगवान होते हैं, लेकिन भगवान हमें आकर सिखला रहे हैं कि किस तरह से हम उनके शरण में जाएं। जिस तरह से मलय जंगल के अंदर जो चंदन होता है उसे मलय चंदन कहते हैं, लेकिन चंदन का वास्तव में जंगल से कुछ लेना देना नहीं है। मलय जो चंदन के गुण होते हैं वो तो अपने ही गुण होते हैं, और जो जंगल के गुण होते हैं वो जंगल के गुण होते हैं, लेकिन उस वृक्ष का भाग्य है, उसके कर्म के अनुसार, पूर्व जन्मों के कर्म के अनुसार उसे मलय जंगल में जन्म मिला है, इसलिए उसको मलय चंदन कहते हैं। तो ठीक उसी तरह से भगवान अलग अलग कुल में, अलग अलग जगहों में, स्थानों में, परिवारों में प्रकट होते हैं। किसी का पुत्र बनते हैं, किसी को माता पिता स्वीकार करते हैं। प्रभु रामचंद्र जी ने अवतार लिया था सूर्य वंश में, और भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया चंद्र वंश में। अभी अगर किसी का जन्म किसी बड़े परिवार में हो जाता है तो उसका यश बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? क्योंकि उसने उस बड़े परिवार में जन्म लिया। अगर कोई टाटा बिरला का बच्चा हो, लड़का हो, और सड़क से जाए तो लोग कहेंगे ये देखो टाटा का पुत्र जा रहा है, बिरला जी का बच्चा जा रहा है। इसका मतलब है कि वंश जो है बड़ा है, और बच्चे का नाम जो है वो बच्चा प्रसिद्ध हो जाता है, क्योंकि उस कुल में उसने जन्म लिया। लेकिन भगवान के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। भगवान जहां जन्म लेते हैं वो कुल प्रसिद्ध हो जाता है, वो कुल धन्य हो जाता है। जिस तरह से चंदन मलय के जंगल में होने की वजह से वो जंगल का नाम ही प्रसिद्ध हो गया, इसलिए मलय चंदन कहते हैं। नहीं तो किसने सुना होगा मलय जंगल क्या है, लेकिन वहां का चंदन बड़ा श्रेष्ठ होता है। इसलिए राजा कुलशेखर बताते हैं, जयति जयति देवकी नंदन सो, जयति जयति वृष्णि वंश प्रदीप, जयति जयति मेघ श्यामल कोमलांगो, जयति जयति पृथ्वी भारनाशो मुकुंद। राजा कुलशेखर प्रार्थना करते हैं, जय जयकार हो उस कृष्ण का जो कि देवकी के पुत्र के रूप में आए हैं। उन्हें कहते हैं देवकी का पुत्र, लेकिन वास्तव में भगवान किसी का पुत्र कैसे हो सकते हैं? वही तो सभी के माता पिता हैं। जय जयकार हो उस कृष्ण का जो कि वृष्णि वंश के प्रदीप हैं, अर्थात वृष्णि वंश धन्य हो गया है क्योंकि कृष्ण भगवान ने उस वंश में जन्म लिया है। जय जयकार हो उस कृष्ण का जिसका सांवला रंग है, बरसात के मौसम में जो बादल होता है, जो बादल का रंग होता है, वही रंग लेकर आए हैं ये परम भगवान। जय जयकार हो उनका, और जय जयकार हो उस भगवान श्री हरि का जो मुकुंदर के नाम से भी जाने जाते हैं, और जो पृथ्वी के का भार जो है वो नष्ट कर देते हैं, कम करते हैं। ये है श्री कृष्ण। जहां भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं सारे जगह का उद्धार कर देते हैं। इसलिए हमें ये नहीं सोचना है कि ये इधर के कृष्ण हैं, इस ये भगवान इस प्रांत के हैं, इस देश के हैं, इस कौम के हैं। नहीं, आदि पुरुष यही हैं श्री कृष्ण। इसलिए हर परिस्थिति में इनका हमें स्मरण करना चाहिए। ये है गीता और भागवत का उपदेश। और जो व्यक्ति वास्तव में ऐसे बन जाता है उसको दिव्य आनंद की प्राप्ति हो सकती है। भगवान का माता पिता बनना, इसके लिए कितने पुण्य किए होंगे। हम इस प्रवचन में ही थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे कि इस मंदिर में आने के लिए भी, कृष्ण भगवान के सामने आके उनका दर्शन करना, उनकी कथा का श्रवण करना, उनके नाम का उच्चारण करना, इसके लिए भी कितनी सुकृति की आवश्यकता है। तो माता पिता बनने की के लिए कितनी सुकृति की आवश्यकता हुई होगी। इसलिए सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में सुंदर श्लोक में वर्णन करते हैं, उन ग्वाल बालों का सौभाग्य जो कि श्री कृष्ण के साथ दास्यं गतानां परदैवतेन मायाश्रितानां नरदारकेण साकं विजहरु कृत पुण्य पुञ्जाः। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं जो निराकार भगवान की उपासना करने के इच्छुक होते हैं। वो ये नहीं मानते कि भगवान का कोई रूप है, कि भगवान कोई व्यक्ति है। सोचते हैं कि भगवान केवल कोई शक्ति है जिनका कोई रूप नहीं है। तो वो ब्रह्म सुख की अभिलाषा रखते हैं अपने हृदय में, भगवान को केवल एक ज्योति समझते हैं, एक प्रकाश समझते हैं। लेकिन देखिए, ज्योति का भी कोई उगम स्थान होता है ना। जैसे इतना प्रकाश आपको यहां दिखाई पड़ रहा है, तो प्रकाश कहां से आ रहा है? यहां ट्यूबलाइट है, बल्ब है, कैमरा है, यहां से प्रकाश आ रहा है। दिन के समय प्रकाश सूरज से आता है, तो जहां प्रकाश है वहां प्रकाश का स्रोत उगम स्थान भी है। तो जो लोग केवल भगवान को निराकार समझते हैं, प्रकाश समझते हैं, वो इस बात को नहीं जानते कि इस प्रकाश के पीछे भी कोई व्यक्ति है जो इतना प्रकाशमान है कि उसके दिव्य शरीर के तेज मात्र से ही अनंत कोटि ब्रह्मांडों में उजाला फैल जाता है। और उस दिव्य शरीर के तेज का एक प्रतिबिंब सूरज और चांद के माध्यम से अनंत कोटि ब्रह्मांडों के भीतर प्रकट होता है। तो ये जो सूरज और चांद की रोशनी हम देखते हैं हर रोज, ये इतनी तीव्र है और ये केवल एक प्रतिबिंब है उस ज्योति का जो कि भगवान के धाम को प्रकाशित करती है। और ये तेज यही भगवान श्री कृष्ण के दिव्य शरीर से उत्पन्न होता है। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम्, भगवत गीता के 14वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण घोषणा करते हैं कि ये निराकार ज्योति का उगम स्थान मैं हूं, है अर्जुन। लेकिन जो ज्ञान मार्ग का अनुशीलन करते हैं वो भगवान के निराकार स्वरूप की उपासना करना पसंद करते हैं। इसलिए भक्त प्रार्थना करते हैं, हिरण्मयेन पात्रेण सत्य सापहितं मुखं तत्त्वं पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। भक्त इस निराकार स्वरूप को पसंद नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि हे प्रभु, आपके मुखारविंद के सामने से जो तेज है उसको कृपा करके हटाएं, ताकि मैं आपके सुंदर मुखारविंद का दर्शन कर सकूं, आपको बांसुरी बजाते हुए देख सकूं, आपके कमल नयनों का दर्शन कर सकूं, आपके घुंघराले काले बालों का दर्शन कर सकूं, आपके पीतांबर को देख सकूं, आपके कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स का दर्शन कर सकूं। तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो निराकार की उपासना करते हैं और सोचते हैं कि परब्रह्म निराकार ही है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि भगवान को दास अपना स्वामी मानते हैं और अपने आप को दास मानते हैं। और कई ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं, क्योंकि वो माया में है, सोचते हैं नरदारकेण, ये जो बच्चा माखन चोरी कर रहा है, नंद महाराज के आंगन में खेल रहा है, ये तो एक साधारण बच्चा है। तो इस तरह से कृष्ण भगवान के बारे में अलग अलग लोगों की अलग अलग धारणाएं हैं। लेकिन सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो बच्चे भगवान श्री कृष्ण के साथ में खेल रहे हैं, उनके साथ में माखन चोरी कर रहे हैं, गौओं को चरा रहे हैं, वो क्या सोच रहे हैं कृष्ण भगवान के बारे में? अरे ये तो मेरा मित्र है, ये तो मेरा यार है, ये तो मेरा सखा है। और जब कृष्ण भगवान कुछ कहते हैं या कुछ करते हैं जो उनको पसंद नहीं होता खेल खेल में ही, तो ग्वाल बाल उनसे कहते हैं कि तुम कोई बड़े आदमी हो क्या, मैं भी तुमसे कोई कम नहीं, देखो मेरे अंदर कितनी शक्ति है। और कृष्ण भगवान कहते हैं, नहीं बाबा, तुमसे कौन अभी झगड़ा करेगा, तुम तो बड़े हट्टे खट्टे हो, मैं तो छोटा सा हूं। और जब भगवान श्री कृष्ण उनके ग्वाल बाल मित्रों के साथ में कभी कुश्ती करते हैं, कभी कभी हार भी जाते हैं और हारना पसंद करते हैं अपने भक्तों के सामने। जिस तरह से एक पिता जब अपने बच्चे के साथ में कुश्ती करता है, बच्चा कहता है कि मैं दारा सिंह और तुम जो भी है, जो भी कुश्ती वाले करने होंगे, जो भी उनके नाम हो, और पिता कहता है ठीक है चलो आओ मैदान में, और दोनों कुश्ती करते हैं और बड़े सीरियसली युद्ध करते, गंभीरता से दोनों बच्चे और बाप जो है कुश्ती करते रहते हैं। आखिर में बच्चा जीत जाता है, पिता के वक्ष स्थल पर बैठकर मुक्का दिखाता है, कहता है कि अब हार गए? बाप कहता हां भाई हां, हार गया हार गया, तुम तो बहुत शक्तिशाली हो। बच्चे को हारने में, बाप को हारने में ज्यादा आनंद आता है, जीतने में नहीं। वास्तव में पिता की शक्ति बहुत ज्यादा है, बच्चे की तुलना की शक्ति की तुलना क्या कर सकते हैं पिताजी के साथ में? बिल्कुल नहीं। उसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अपार है, इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसे लीला करने आते हैं इस ब्रह्मांड के भीतर, तो अपने ग्वाल बाल मित्रों के संग में हार जाना पसंद करते हैं, माता यशोदा से डांट खाना पसंद करते हैं, उनकी लाठी जब ऊपर आ जाती है तो तुरंत बड़े बड़े आंखें करके भाग जाते हैं। जब माता यशोदा कहती है कृष्ण, जब ऊंचे स्वर में बोलती है तो कांपने लगते हैं कि अब क्या होगा, यही वो कृष्ण है, ऐसी भावना लेकर आते हैं। इसलिए कृष्ण लीला इतनी मधुर है। वृंदावन के सिवाय कौन सा ऐसा जगह है सारे संसार में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, जहां वही परम भगवान जिसके नाम का उच्चारण करने मात्र से सारा ब्रह्मांड कांपता है। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने हिरण्यकश्यप और रावण जैसे बड़े असुरों का वध किया है, वही भगवान आज आकर ऐसे मधुर लीला करते हैं। भला कौन सा स्थान और हो सकता है ये अनंत कोटि ब्रह्मांडों में? ये है कृष्ण लीला की विशेषता। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कृत पुण्य पुंजाह, कि इनके पास, ग्वाल बालों के पास क्या पूंजी थी, क्या धन था? रुपए नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, उनकी पूंजी थी कि उन्होंने पूर्व जन्मों में बहुत सुकृति की थी, कृत पुण्य, और इतनी भक्ति की थी, इतनी सेवा की थी कि आज उनको वृंदावन के रम्य वातावरण में कृष्ण भगवान का निजी संग प्राप्त हुआ एक ग्वाल बाल के रूप में, कृष्ण उनके सखा बनकर आए। तो ये ग्वाल बाल कृष्ण को केवल अपना सखा मानते थे, भगवान नहीं मानते थे। और अगर कोई कह भी देता उनके कि तुम्हारा सखा भगवान है, कहते अरे तुम तो भ्रम में हो, मैं तो उसको रोज कुश्ती में हरा देता हूं, ये भला कैसे भगवान हो सकता है? तो ये है भगवत प्रेम। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। तो देखिए, भक्त बनने के लिए कितनी सुकृति की आवश्यकता है, तो भगवान के माता पिता बनने के लिए कितना और सुकृति की आवश्यकता है। इसलिए ये सब कथाएं जब परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से सुन रहे थे तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहने लगे, नंदह किम अकरोत् ब्रह्मन् श्रेयः एवं महोदयम्। वो कहने लगे कि हे ब्रह्मन्, हे सुखदेव गोस्वामी, नंद महाराज ने कौन से पुण्य किए होंगे, कौन से ऊंचे सुकृति किए होंगे जिनसे कि उनको कृष्ण भगवान पर ब्रह्म पुत्र के रूप में आए। यशोदा च महाभागा, यशोदा जी वो तो कितनी महाभाग्यशाली हैं, स्तनम पापौ ययौ हरिहि। माता यशोदा ने क्या बड़े पुण्य किए होंगे जिनकी वजह से परम ब्रह्म श्री हरि श्री नारायण अब उनका स्तनपान कर रहे हैं, उनके स्तनों से दूध का पान कर रहे हैं। क्या उन्होंने किए होंगे पुण्य पिछले जन्मों में। तो परीक्षित महाराज को बड़ा अच्छा आश्चर्य लग रहा है कि ये भगवान आज आकर ऐसी लीला यहां पर कर रहे हैं। तो देखिए, भगवान श्री कृष्ण के दो माता पिता हुए, मथुरा के कारागर में देवकी और वसुदेव, और वृंदावन में यशोदा और नंद महाराज। अब जब कृष्ण भगवान प्रकट हुए मथुरा के कारागर में, कंस के कारागर में, तो देवकी और वसुदेव को वो आनंद नहीं मिला जो कि यशोदा और नंद महाराज को मिला। देवकी और वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का दर्शन नहीं किया, उनको माखन चुराते हुए नहीं देखा, उनको डांटने का कोई अवसर नहीं मिला। बताया जाता है कि वसुदेव और देवकी पूर्व जन्मों में सुतपा और प्रश्नी नाम के देव थे, प्रजापति थे, और बड़ी तपस्या की उन्होंने। 12,000 वर्ष तक देव लोक की गणना से, 12,000 वर्ष पृथ्वी लोक की गणना से नहीं, तो इतने लंबे समय तक तपस्या करने के पश्चात भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कहने लगे कि हे सुतपा, हे प्रश्नी, तुम्हें क्या चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान सोच में पड़ गए कि मेरे जैसा पुत्र भला कौन हो सकता है, तो मुझे ही आना होगा। तो उन्होंने कहा कि मैं ही पुत्र बनकर तुम्हारे गर्भ से आऊंगा, क्योंकि मेरे जैसा व्यक्ति तो सारे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। तो इसलिए भगवान उस समय प्रश्नी गर्भ के नाम से जाने गए। और ये बात भगवान विष्णु ने देवकी को बताया कंस के कारागर में जब वो प्रकट हुए, और बताया कि माता देवकी, आप बिल्कुल भयभीत नहीं होइए, कंस मेरा एक बाल भी छू नहीं सकता, उल्टा मैं ही कंस का वध करने के लिए आया हूं, तो क्यों डर रही हैं आप। मैं वही भगवान हूं जो तुम दोनों के सामने 3 जन्म पहले प्रकट हुआ था। उस समय आपका नाम सुतपा और प्रश्नी था, और मेरा नाम प्रश्नी गर्भ हुआ, और इसके बाद वाले जन्म में हे सुतपा आप हुए कश्यप मुनि, और हे प्रश्नी आप हुई अदिति देवी, और मैंने भी आपसे जन्म लिया, और उस समय मेरा नाम था, कोई बता सकते हैं? वामन देव, बटु ब्रह्मचारी उपेंद्र, जिसने आगे जाके बलि महाराज का सब कुछ हर लिया, और इस जन्म में मैं आपका पुत्र बन के आया हूं। मैं वही भगवान श्री हरि हूं, श्री विष्णु श्री कृष्ण हूं, और आपका नाम है देवकी और वसुदेव। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता देवकी और वसुदेव को पूरा पूरा ज्ञान दे दिया कि वो पिछले जन्मों में कौन थे, और भगवान ही उनके पुत्र बनकर आए थे। तो ये प्रश्न आ सकता है कि यशोदा मैया और नंद महाराज को ऐसा आनंद मिला कृष्ण भगवान के बाल लीलाओं का, लेकिन लेकिन वसुदेव और देवकी को नहीं मिला, ऐसा क्यों? क्योंकि यशोदा मैया और नंद महाराज भगवान के नित्य माता पिता हैं। जहां भी अनंत कोटि ब्रह्मांडों में भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करते हैं लीला करने हेतु, वहां पर नंद महाराज और यशोदा मैया आ जाते हैं। अभी इस तीसरे जन्म के बाद में देवकी और वसुदेव को उन भगवान के धाम में लौट कर जाना था, लेकिन यशोदा मैया और नंद महाराज बार बार कृष्ण के साथ में टूरिंग करते रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण जब टूर में जाते हैं ना अनंत कोटि ब्रह्मांडों में, अलग अलग ब्रह्मांडों में लीला करते हैं, एक ब्रह्मांड में लीला करके दूसरे में जाते हैं, दूसरे में जाकर जब वो समाप्त हो जाता है तीसरे में जाते हैं, ऐसा उनका भ्रमण नित्य जारी रहता है। और जब भगवान श्री कृष्ण इस तरह से भ्रमण करते हैं तो साथ साथ में अपने पार्षदों को ले जाते हैं, माता पिता को ले जाते हैं, अपने सखाओं को ले जाते हैं, गोप गोपियों को ले जाते हैं, यहां तक कि अपने धाम को भी ले जाते हैं। आप में से कई व्यवसायी होंगे, व्यापारी होंगे, अफसर होंगे, कोई कर्मचारी होंगे, तो आप जब टूर में जाते हैं तो आप एक सूटकेस बक्सा लेकर जाते हैं इधर उधर, आपका बंगला लेकर उठाकर तो नहीं जाते ना आप। लेकिन कृष्ण भगवान जब टूर में जाते हैं ना तो अपना धाम का धाम ही लेकर जाते हैं, ये है भगवान। इसलिए जो वृंदावन दिल्ली के करीब है वो वास्तव में भगवान का धाम है। इस पृथ्वी से उस वृंदावन का कुछ लेना देना नहीं है। हम जब जाते हैं वृंदावन में तो साधारण पृथ्वी की तरह हमें लगता है, अरे ये तो मिट्टी है, ये तो बालू है, ये तो साधारण जल है, लेकिन नहीं, ये तो साक्षात भगवान का धाम है। तो इस तरह से जहां भी भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करते हैं, अपने लीला प्रदर्शित करते हैं, वहां पर भी ये नंद महाराज और यशोदा मैया उनके साथ में जाती हैं। हमें याद रखना है कि नंद महाराज और यशोदा मैया को तपस्या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी भगवान के माता पिता बनने के लिए, लेकिन वसुदेव और देवकी को 12,000 वर्ष तपस्या करनी पड़ी। तो थोड़े समय के लिए, थोड़े जन्मों के लिए वसुदेव और देवकी, या वो जीवात्मा जो कि वसुदेव और देवकी बने थे, वो उनके माता पिता थोड़े जन्मों के लिए बने, और फिर वो जीव भगवान के धाम में चले गए। लेकिन नंद महाराज और यशोदा मैया नित्य भगवान के माता पिता रहते हैं। पूर्व जन्म में भी वो द्रोण और धरा के नाम से जाने जाते थे, और ये ज्ञान कृष्ण भगवान को दिया गया, कृष्ण भगवान ने दिया वसुदेव को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपने सुंदर सुंदर लीलाएं यहां आकर प्रदर्शित करते हैं, और हमें चाहिए कि हम इन लीलाओं को पढ़ें, इनको सुनें, भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जाप करें, संकीर्तन करें, भक्तों के संग में आएं, और ऐसे हमारे जीवन को धन्य बनाएं। यही जीवन का अनमोल धन है, श्री कृष्ण के प्रति भक्ति प्रेम, और इसी आनंद के लिए हम तरस रहे हैं इतने जन्मों से। संसार का सुख सुख नहीं है, संसार के अंदर वो पात्रता नहीं है कि वो हमें सुख प्रदान करे। आनंद केवल भगवान श्री हरि श्री कृष्ण के भक्ति में है। इसलिए जो व्यक्ति सच्चे आनंद को प्राप्त करना चाहता है उसे श्री कृष्ण का भक्त बनना चाहिए। हम में से कितने लोग जीवन में सुखी होना चाहते हैं, सच्चे आनंद की प्राप्ति करना चाहते हैं? सभी लोग। कोई आदमी जाकर दुख को निमंत्रण नहीं करता कि हे मिस्टर दुख, कृपा करके आइए हमारे जीवन में, बहुत समय हो गया आपसे मुलाकात नहीं हुई, आपका अनुभव नहीं हुआ, कृपा करके हमारे छोटी सी कुटिया में पधारें। कोई जाकर प्रार्थना नहीं करता। जो भी आते हैं भगवान के सामने, प्रभु बेड़ा पार कीजिए, ये चाहिए वो चाहिए, ये कष्ट से मुक्त कर दीजिए, वो कष्ट से मुक्त कर दीजिए, हमें सुख दीजिए। तो हर एक व्यक्ति संसार में सुख चाहता है, लेकिन हर एक व्यक्ति दुखी है, क्योंकि ये संसार ही दुख का आलय है। भगवान ने घोषणा कर दी है कि ये संसार दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है ये, क्षणिक है ये संसार है अर्जुन। इसलिए संसार में सुख पाने का प्रयास न करो, इस संसार के चमक धमक से प्रभावित नहीं हो जाना। इस टेलीविजन में जो चमक धमक हमें दिखाई पड़ रहा है, पश्चिम देशों की संस्कृति दिखाई पड़ रही है जो बहुत तेज गति से हमारे घरों में प्रवेश कर रही है और घरों में से हमारे हृदय में प्रवेश कर रही है, उससे हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये संसार का चमक धमक झूठा है, बस माया देवी हमें ये चमक धमक हमारे आंखों के सामने लटकाकर हमारे मृत्यु की ओर निमंत्रण दे रही है। आओ आओ मृत्यु की ओर, हम चले जा रहे हैं माया देवी, हाँ हाँ ये बहुत आकर्षक लग रहा है, बहुत अच्छा है, और सीधे चले जा रहे हैं मृत्यु की ओर। लेकिन हमारे उपनिषदों में बताया गया है, मृतो मा अमृत गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय, तो हमें मृत अवस्था से अमृत अवस्था में जाना है, अंधकार से प्रकाश में जाना है, इसको भक्ति कहते हैं। और इसलिए हमें आना है इस मंदिर में, और जहां राधा गोकुलानंद जी विराजमान हैं, चुपचाप बैठे हैं, देखिए दर्शन कर रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, हमारे हृदय में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, सब कुछ जानते हैं, सुपर कंप्यूटर उनका चल रहा है, बराबर जान रहे हैं, लेकिन दिखाते नहीं है कुछ, खड़े हैं आराम से बांसुरी बजा रहे हैं, सुनाई पड़ रही है उनकी मुरली की तान, जिनके हृदय में भक्ति है वो सुन पा रहे हैं उनकी मुरली की तान। प्रिय सोयम कृष्ण सहचरी कृष्ण, प्रिय सोयम, हे कृष्ण है, हे सहचरी, ये कृष्ण वहां खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं। स्मेरम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम गोविंदाख्याम हरि तनुम इतः, इको गोविंद कहते हैं, हरि कहते हैं, यमुना जी के तट में होकर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं, निमंत्रण दे रहे हैं, आओ आओ मेरे पास। तो आप जब यहां आए हैं तो कृपा करके इनकी मुरली के तान को सुनिए, और इनके चरण कमलों में कितना आनंद है इसको अनुभव कीजिए, इसमें आपको और कोई नुकसान नहीं होगा, आपको त्यागना होगा तो केवल आपका दुख त्यागना होगा। कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपना दुख त्यागना नहीं चाहेगा? हर एक व्यक्ति चाहता है। तो यहां आइए, राधा गोकुल आनंद जी के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त कीजिए और परम आनंद की प्राप्ति कीजिए। इस कलयुग में कल्याण का मार्ग, भगवान को जानने का मार्ग, उनके नाम का संकीर्तन करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चख के तो देखिए, भगवान का नाम लेकर तो देखिए कि कितना अमृत इस नाम में है। और भगवान का नाम लेने से हम थक नहीं जाते, क्योंकि ये दिव्य ध्वनि है। हरे कृष्ण राम, कृष्ण और राम ये साधारण शब्द नहीं है। कोई भी भौतिक शब्द का उच्चारण कीजिए आप, देखिए बहुत ही जल्दी आप उब जाएंगे। कोका कोला पेप्सी कोला बोलते रहिए, 10 मिनट में उब जाएंगे। लेकिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये बोलते रहिए तो देखिए कभी भी थकेंगे नहीं आप। तो कोका कोला का स्वाद लेने के बजाय अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र, भगवान के दिव्य नाम का स्वाद लें, तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, अमृत से पूर्ण हो जाएगा। इसलिए आप सबसे नम्र निवेदन है कि आप सब इस भक्ति के शुभ मार्ग को स्वीकार करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आप सब को हम आभारी हैं, आप सबको हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि आप सब अपने जीवन से, अपने दैनिक जीवन से इतना समय निकालकर यहां आए, शांति से प्रवचन सुना, और आपसे यही निवेदन करते हैं कि बारंबार यहां पर आया कीजिए और भक्ति का आनंद लीजिए। हरे कृष्णा। आपके कोई प्रश्न, कोई टीका है तो आप पूछ सकते हैं, और उसके पश्चात हम थोड़े समय के लिए ही कीर्तन करेंगे।
आपने कहा कि मंदिर में आने के लिए काफी पुण्य करना पड़ता है, तो अभी लोग तो बाहर काफी बुरे काम कर रहे हैं, बट फिर भी वो मंदिर में आके पूजा करके थोड़ी देर चले जाते हैं। बाहर तो वो कुछ भी कर रहे हैं, बट अंदर तो वो यही सोच के आ रहे हैं ना कि बाहर कुछ भी कर लो, अंदर आके 10 मिनट बैठ लिए तो सब ठीक हो जाएगा। काम तो वो काफी बुरे कर रहे हैं।
हाँ, ये प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि मंदिरों में जाने वाले लोगों की संख्या कम नहीं है, बहुत लोग जाते हैं लेकिन फिर भी पाप करते रहते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि ऐसे लोग बहुत सारे हैं, और इस प्रश्न का जवाब कई तरह से दिया जा सकता है। पहली बात, कम से कम पाप करने के बाद मंदिर में तो आ रहा है ना, शराब के अड्डे में तो नहीं जा रहा, जुआ के अड्डे में तो नहीं जा रहा, किसी का खून तो नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम पाप करें, मंदिर में आए और फिर सोच लें कि हम पाप हमने धो लिए हैं और फिर से जाकर पाप करें, फिर से आकर धो लें, ये भी एक पाप माना जाता है। इसको कुंजर शौच कहते हैं। जैसे एक हाथी स्नान करता है और स्नान करने के बाद में तुरंत आके मिट्टी में लेट जाता है तो उसके स्नान का कोई लाभ नहीं हुआ। उसी तरह से लोग आते हैं मंदिरों में, दर्शन करते हैं और फिर से पाप करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे एक वृत्ति अगर हो किसी की, उस गणना से कोई आ रहा है, कैलकुलेशन से आ रहा है, तो वो अच्छी बात नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम एक ऐसे स्थान में जाएं जहां हमें भगवान के बारे में उपदेश मिले। देखिए समस्या क्या है, मंदिरों में जाने के बाद में लोगों को उपदेश नहीं मिल रहा, ज्ञान नहीं मिल रहा, यह समस्या है। इसीलिए लोग आते हैं, दर्शन करके चले जाते हैं। दर्शन दर्शन करने मात्र से उद्धार नहीं हो सकता, हमें श्रवण करना चाहिए। भगवान को जाना जा सकता है अपने आंखों से नहीं, अपने कर्णों से, अपने कानों से। इसलिए अगर पाप करने की प्रवृत्ति से हमें मुक्त होना है तो हमें सबसे पहले भगवान की कथा, भगवान का उपदेश सुनना चाहिए। और क्योंकि ज्यादातर मंदिरों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती, इसलिए ज्यादातर जनसाधारण में, प्रजा में ये एक आदत रहती है कि मंदिर में जाते हैं और फिर से आते हैं, फिर से वही कार्य करने लगते हैं। लेकिन जब हम भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल में आते हैं और उनके भक्तों के संग में रहकर भगवान की कथा उपदेश सुनते हैं तो वास्तव में हमारे जीवन में सुधार आ जाता है, वास्तव में हमारे हृदय परिवर्तित हो जाता है, हमारी बुरी आदतें छूट जाती हैं, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, हृदय में भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम जागृत हो जाता है। यह है सही मंदिर, यह है असली मंदिर। जो हमारे हृदय को मंदिर बनाने में हमें प्रेरित करे वो सही मंदिर है। ठीक है, तो हम सबको यही चाहिए कि हमारे हृदय को मंदिर बनाएं। इसलिए कृपा करके आप सभी लोग यहां पर आए, आप सब इतनी शांति से बैठे थे, इतनी बड़ी संख्या में आए तो हमें भी बोलने के लिए कुछ प्रेरणा हुई। श्रोतागण जब उत्साही होते हैं, ध्यान से सुनते हैं तो बोलने वालों के भी कोई को उत्साह मिल जाता है। हमने ये नहीं सोचा था कि क्या, कुछ सोच कर आए थे कि क्या बोलेंगे और कुछ और बोल गए, क्यों आपके चेहरों को देखा, इतने ध्यान से आप सुनने के इच्छुक हैं। ये भी बड़े पुण्य के लक्षण होते हैं, कोई साधारण आदमी ऐसे बैठ नहीं सकता लंबे समय भगवान की कथा सुनने के लिए।